SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
प्रस्तुत हैं आज के संक्षिप्त समाचार। रूस में जन्मे दो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर जासूसी अपराध का आरोप लगाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल की 42 वर्षीय महिला कीरा कोरोलेव और 62 वर्षीय इगोर कोरोलेव को जासूसी अपराध की तैयारी के लिए एक मामले में आज ब्रिस्बेन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने एक कथित जासूसी अभियान को बाधित करने में सुरक्षा एजेंसियों को उनके काम के लिए बधाई दी है। काउंटर फॉरेन इंटरफेरेंस टास्क फोर्स, जिसमें एएफपी, एएसआईओ और अन्य राष्ट्रमंडल एजेंसियां शामिल है, के एक संयुक्त अभियान के बाद दोनों पर जासूसी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे इस पद के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके अधिक से अधिक साथी डेमोक्रेट उनसे अभियान से हटने के लिए कह रहे हैं। श्री बाइडेन ने एक बार फिर आज चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जिक्र किया और फिर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम मिलाया। लेबर पक्ष का कहना है कि वे आशावादी है कि अली फ्रांस 2025 के फेडरल चुनाव में पीटर डटन को उनकी क्वींसलैंड सीट पर हराने में सक्षम होंगी। जैसा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने आज युद्ध के मैदान का अपना दौरा जारी रखा, उन्होंने सुश्री फ्रांस को डिक्सन की ब्रिस्बेन सीट के लिए लेबर उम्मीदवार के रूप में पेश किया और उनके पीछे अपना समर्थन दिया। सुश्री फ्रांस, जिन्होंने 2019 और 2022 दोनों चुनावों में सीट के लिए प्रतिस्पर्धा की, सबसे हालिया फेडरल चुनाव में गठबंधन नेता को हराने के करीब पहुंच गई। विक्टोरियन सरकार ने परिवार हिंसा और यौन उत्पीड़न क्षेत्र में श्रमिकों का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की है। ये घरेलू हिंसा निकायों के एक आह्वान के बाद आया है, जिसमें इस क्षेत्र में फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए अधिक फंडिंग की मांग की गई थी। पारिवारिक हिंसा निवारण मंत्री विकी वार्ड ने आज सुबह इस बात की घोषणा की। यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा $250 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है, जो यूक्रेन की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। वॉशिंगटन में नाटो सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सैन्य सहायता पैकेज का अनावरण किया है, जिसमें वायु रक्षा मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार और टैंक रोधी हथियार शामिल होंगे। वायु रक्षा प्रणालियों पर नए सिरे से ध्यान रूसी मिसाइल हमले के बाद आया है, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बच्चों के अस्पताल पर हमला भी हुआ था। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स कहते हैं कि दवा उपयोगकर्ता, चिकित्सा विशेषज्ञ, पुलिस और सहायता निकाय सभी इस साल के अंत में एक बहुप्रतीक्षित दवा शिखर सम्मेलन में योगदान देंगे। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन अक्टूबर में क्षेत्रीय मंचों के साथ शुरू होगा और 2023 में किए गए चुनावी वादे को पूरा करेगा। 1999 में आखिरी दवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुए 25 साल हो गए हैं, जिसके कारण उस समय सिडनी में चिकित्सीय देखरेख में इंजेक्शन केंद्र की शुरुआत हुई थी। अब खबर भारत से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अब इस मामले में 3 जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है। इसी के साथ आज के संक्षिप्त समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
Why do people want to be at work? To feel heard. appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.